एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत भारी भरकम कह सकते हैं, लेकिन बेहद जरूरी दस्तावेज पर बात करने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसी किताब जिसने न सिर्फ 20वीं सदी पर अपनी छाप छोड़ी बल्कि मुझे लगता है आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है।
हम बात कर रहे हैं सर विंस्टन चर्चिल की लिखी 6 हिस्सों की विशाल रचना द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की।
और इसे सिर्फ इतिहास की किताब समझना वो शायद पूरी बात नहीं होगी, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब लीडरशिप, मुश्किल हालात से कैसे निपटा जाए, डिप्लोमेसी और यहाँ तक कि इंसान के जज्बे की कहानी भी है।
सही कहा।
आप सोचिए, आज भी दुनिया में कितने संकट आते हैं, देशों के बीच तनाव होता है, लीडर्स को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं।
हाँ,
तो ऐसे में चर्चिल के अनुभव, उनकी सोच, ये बातें आज भी कितनी काम की हो सकती हैं।
बिल्कुल, पिछली गलतियों से सीखना, आने वाले खतरों को भांपना, ये सब इस किताब में है।
तो चलिए शुरू करते हैं इसके लेखक से। सर विंस्टन चर्चिल, 1874 से 1965 तक। ये सिर्फ एक लेखक या इतिहासकार नहीं थे, बल्कि उस कहानी के क्या कहते हैं मुख्य किरदारों में से एक थे जिसके बारे में उन्होंने लिखा।
हाँ बिल्कुल, जब दूसरा विश्वयुद्ध अपने चरम पर था, यानी मई 1940 से जुलाई 1945 तक, वो यूके के प्रधानमंत्री थे। और उनका तजुर्बा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, वो तो सेना में रहे, जंग की रिपोर्टिंग की, सालों तक सांसद रहे और दोनों विश्वयुद्धों में नौसेना से जुड़े अहम पद संभाले।
बाप रे,
मतलब राजनीति और युद्ध का उन्हें फर्स्ट हैंड, जिसे कहते हैं, अनुभव था।
हाँ, और यही बात इस किताब को खास बनाती है। वो सिर्फ बाहर से देखकर इतिहास नहीं लिख रहे थे, उनके पास वो जानकारी थी जो शायद ही किसी इतिहासकार के पास हो सकती है। खुद के लिखे मेमो, सीक्रेट टेलीग्राम्स, कैबिनेट मीटिंग के नोट्स,
और दुनिया के बड़े नेताओं जैसे रूजवेल्ट और स्टालिन के साथ हुई सीधी बातचीत के रिकॉर्ड्स।
सोचिए जरा,
ये एक तरह से अंदर की कहानी है। आप सीधे उन कमरों में पहुंच जाते हैं जहां दुनिया की किस्मत के फैसले हो रहे थे। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये कहानी चर्चिल के नजरिए से ज्यादा कही गई है।
हाँ, कि उन्होंने अपनी भूमिका और अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश की।
हाँ बिल्कुल, पर इसकी लिखने की कला और ऐतिहासिक गहराई ऐसी थी कि उन्हें 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला।
अच्छा, नोबेल प्राइज लिटरेचर में, इतिहास के लिए?
हाँ, इतिहास और उनकी जीवनी लिखने की कला के लिए।
तो ये जो 6 हिस्सों की भारी भरकम किताब है, आखिर ये है किस बारे में? मतलब एक लाइन में कहना हो तो।
मुश्किल है एक लाइन में, पर हाँ, ये एक बहुत बड़ी कहानी है जो पहले विश्व युद्ध के बाद से शुरू होती है और 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने और कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की आहट तक जाती है। इसके लिखने के पीछे चर्चिल के शायद कई मकसद थे। एक तो जाहिर है, युद्ध कैसे शुरू हुआ, कैसे लड़ा गया, कौन सी रणनीतियां बनी, इसका पूरा ब्यौरा देना।
राइट।
दूसरा, ये बताना कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, बल्कि मतलब सही और गलत के बीच थी, लोकतंत्र और तानाशाही के बीच।
अच्छा।
और तीसरा, शायद अपनी भूमिका को इतिहास में दर्ज करना कि कैसे उन्होंने ब्रिटेन को मुश्किल वक्त से निकाला।
अपनी लेगेसी।
हाँ, एक तरह से।
और पूरी किताब का एक सेंट्रल आइडिया है जिस पर चर्चिल बार बार लौटते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध एक गैर जरूरी युद्ध था।
हाँ,
एक ऐसी तबाही जिसे टाला जा सकता था। वो मानते थे कि ये पश्चिमी देशों की, खासकर 1930 के दशक में, कमजोरी और हिचकिचाहट का नतीजा था।
बिल्कुल, उनका मानना था कि हिटलर की शुरुआती आक्रामकता को नजरअंदाज करना, उसे खुश करने की कोशिश करना, जिसे अपीजमेंट कहते हैं,
तुष्टीकरण।
हाँ, तुष्टीकरण, यही वो गलतियां थीं जिन्होंने एक रोके जा सकने वाले झगड़े को दुनिया भर की जंग में बदल दिया। चर्चिल ये भी दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने 1930s के दशक में इन खतरों के बारे में चेतावनी दी थी, पर उनकी सुनी नहीं गई।
अच्छा, तो किताब हमें उस दौर में ले जाती है, पहले विश्व युद्ध के बाद की शांति की कोशिशें जो मतलब नाकाम रहीं।
हाँ,
फिर हिटलर का उभार, जर्मनी का दोबारा हथियार बनाना और वो म्यूनिख समझौता
जिसे चर्चिल ने हार की तरह देखा था, पूरी तरह हार।
फिर कहानी तेज होती है जब चर्चिल 1940 में प्रधानमंत्री बनते हैं।
हाँ, और ब्रिटेन अकेला खड़ा होता है ना नाजी जर्मनी के सामने। वो दौर जिसे चर्चिल ब्रिटेन का सबसे शानदार पल, फाइनेस्ट आर कहते हैं, जब लंदन पर बम गिर रहे थे, ब्लिट्स जिसे कहते हैं।
हाँ, ब्लिट्स।
और ब्रिटेन हवा और समंदर में अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, बैटल ऑफ ब्रिटेन, बैटल ऑफ अटलांटिक।
इसके बाद लड़ाई दुनिया भर में फैल जाती है ना?
बिल्कुल। हिटलर रूस पे हमला करता है, जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर, और फिर बनता है वो ग्रैंड अलायंस।
ग्रैंड अलायंस मतलब ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ।
हाँ, जो विचारधारा में बिल्कुल अलग होते हुए भी हिटलर को हराने के लिए साथ आते हैं। चर्चिल हमें रूजवेल्ट और स्टालिन के साथ हुई मीटिंग्स की अंदरूनी झलक भी देते हैं।
वाह, फिर किताब युद्ध के मोड़ों की बात करती है।
हाँ, वो लड़ाइयां जिन्होंने पासा पलटा, चर्चिल उसे किस्मत का काज या हिंज ऑफ फेट कहते हैं। जैसे मिडवे की लड़ाई, एल अलामीन, स्टेलिनग्राड। फिर मित्र देशों की सेनाएं कैसे अफ्रीका, इटली से होते हुए जर्मनी पर घेरा कसती हैं, जिसे वो क्लोजिंग द रिंग कहते हैं।
और डीडे की तैयारी, नॉर्मंडी लैंडिंग।
हाँ, वो सब।
और आखिर में आता है जीत और त्रासदी, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी।
बिल्कुल, हिटलर की हार, जर्मनी का सरेंडर, लेकिन जीत के साथ एक उदासी भी है। चर्चिल बताते हैं कि कैसे पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का कब्जा हो रहा था और कैसे याल्टा कॉन्फ्रेंस में लिए गए फैसलों से वो चिंतित थे।
तो कहानी जीत पर खत्म नहीं होती।
नहीं, बल्कि एक नई चिंता के साथ कि एक तानाशाही को हराते हराते कहीं दूसरी तानाशाही के लिए रास्ता तो नहीं बना दिया। यहीं से कोल्ड वॉर की नींव पड़ती दिखती है।
चलिए इन 6 वॉल्यूम्स पर थोड़ी और नजर डालते हैं, मतलब कहानी के बहाव को समझते हुए। पहला हिस्सा, द गैदरिंग स्टॉर्म।
हाँ, द गैदरिंग स्टॉर्म, जैसा नाम से ही लगते हैं, ये उस तूफान के बनने की कहानी है। यहाँ चर्चिल अपना मेन पॉइंट रखते हैं कि ये युद्ध गैर जरूरी था, रोका जा सकता था। वो 1930 के दशक की घटनाओं को देखते हैं, कैसे हिटलर ने संधियों को तोड़ा, कैसे पश्चिमी देशों ने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई,
और कैसे उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया।
बिल्कुल, ये हिस्सा चर्चिल के प्रधानमंत्री बनने और फ्रांस पर जर्मन हमले के साथ एक टेंशन वाले मोड़ पर खत्म होता है।
दूसरा हिस्सा, देयर फाइनेस्ट आवर, ब्रिटेन का वो अकेलापन वाला दौर।
हाँ, देयर फाइनेस्ट आवर, 1940 का साल, फ्रांस हार चुका था और ब्रिटेन पर हमले का खतरा। यहाँ चर्चिल बताते हैं कि कैसे देश ने हिम्मत दिखाई, कैसे आरएएफ ने आसमान में लड़ाई जीती, बैटल ऑफ ब्रिटेन, और कैसे उनके भाषणों ने लोगों का हौसला बढ़ाया। ये वाकई मुश्किल हालात में जज्बे की कहानी है।
फिर तीसरा हिस्सा, द ग्रैंड अलायंस। अब लड़ाई ग्लोबल हो गई।
हाँ, द ग्रैंड अलायंस। 1941 में दो बड़ी घटनाएं होती हैं, हिटलर का रूस पर हमला और जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। अब ब्रिटेन अकेला नहीं है, अमेरिका और सोवियत संघ भी युद्ध में शामिल। यहाँ चर्चिल बताते हैं कि कैसे इन तीन बिल्कुल अलग ताकतों का साथ आना कितना जरूरी था, भले ये कितना मुश्किल था।
और चौथा हिस्सा, द हिंज ऑफ फेट, किस्मत का मोड़।
द हिंज ऑफ फेट, 1942-43 का समय, जब युद्ध का पासा पलटना शुरू होता है। शुरुआत में मित्र देशों को हार मिल रही थी, लेकिन फिर मिडवे, एल अलामीन, स्टेलिनग्राड जैसी जीतें मिली।
अच्छा,
चर्चिल दिखाते हैं कि कैसे धीरे धीरे हालात मित्र देशों के पक्ष में झुकने लगे।
पांचवा हिस्सा है, क्लोजिंग द रिंग, घेरा कसना।
क्लोजिंग द रिंग, 1943-44 का दौर। अब मित्र देश जर्मनी के चारों ओर घेरा कस रहे हैं। इटली पर हमला, मुसोलिनी का पतन। जर्मनी पर बमबारी तेज हो जाती है और सबसे बड़ी तैयारी शुरू होती है यूरोप पर मुख्य हमले की, यानी डीडे की। यहां चर्चिल युद्ध की रणनीति और मित्र देशों के बीच के मतभेदों पर भी बात करते हैं, काफी डिटेल में।
और आखिरी छठा हिस्सा, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी, जीत और त्रासदी।
ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी, जीत तो मिलती है, डीडे कामयाब होता है, फ्रांस आजाद होता है, जर्मनी हार मान लेता है,
लेकिन ट्रेजेडी,
त्रासदी ये कि जीत के साथ ही चर्चिल बताते हैं कैसे याल्टा कॉन्फ्रेंस में उन्हें एहसास हो गया था कि स्टालिन का इरादा पूर्वी यूरोप पर कब्जा करना है। वो अपनी चिंता जाहिर करते हैं कि सोवियत खतरा बढ़ रहा है। किताब जापान के सरेंडर के साथ खत्म होती है, लेकिन यूरोप पर लौह आवरण यानी आयरन कर्टन गिरने की आहट के साथ।
इस पूरी कहानी से कई गहरे संदेश निकलते हैं। मुझे लगता है सबसे पहला तो वही, खतरों को नजरअंदाज करने का नतीजा, अपीजमेंट वाली बात।
बिल्कुल, चर्चिल बार बार कहते हैं कि हिटलर को शुरू में ही रोका जा सकता था, लेकिन उसे खुश करने की नीति ने उसे और मजबूत बनाया। ये आज भी एक बड़ा सबक है, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो या हमारी अपनी जिंदगी की मुश्किलें। टालने से बात बिगड़ती ही है।
हाँ, दूसरा अहम संदेश है, सही के लिए खड़े होने की जरूरत।
उनका मानना था कि जब आप सही के लिए लड़ रहे होते हैं तो मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है।
ये बात आज भी उतनी ही सच है।
और तीसरा, गठबंधन की ताकत, मुश्किल होते हुए भी।
हाँ, द ग्रैंड अलायंस। चर्चिल जानते थे कि ब्रिटेन अकेला नहीं जीत सकता, अमेरिका और सोवियत संघ का साथ जरूरी था, भले ही उनके विचार कितने भी अलग क्यों ना हों। ये दिखाता है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए कभी कभी अपने मतभेदों को किनारे रख के साथ काम करना पड़ता है।
आज भी दुनिया में भी, जैसे क्लाइमेट चेंज है या कोई महामारी है, बिना साथ आए काम नहीं चलता।
बिल्कुल। चौथा है लीडरशिप का महत्व।
हाँ,
चर्चिल अपनी किताब में दिखाते हैं कि कैसे मुश्किल वक्त में एक मजबूत, साफ सोच वाला और हौसला देने वाला लीडर कितना फर्क डाल सकता है। वो 1930 के दशक के हिचकिचाते नेताओं की तुलना अपने लीडरशिप से करते हैं। ये बताता है कि संकट के समय लीडरशिप कितनी अहम हो जाती है।
और आखिर में वो बात जो आखिरी वॉल्यूम में ज्यादा उभरती है, जीत के आगे सोचने की जरूरत।
हाँ, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। चर्चिल सिर्फ हिटलर को हराने पर फोकस नहीं कर रहे थे, बल्कि वो भविष्य के खतरे यानी सोवियत संघ को भी देख रहे थे। ये हमें याद दिलाता है कि हमेशा दूर की सोचनी चाहिए, सिर्फ आज की जीत पर खुश नहीं हो जाना चाहिए।
चर्चिल अपने बोलने के अंदाज, अपने जबरदस्त भाषणों के लिए जाने जाते थे, और ये किताब उनके यादगार विचारों और लाइनों से भरी पड़ी है।
हाँ बिल्कुल, कुछ तो आज भी लोग कोट करते हैं।
जैसे जब वो 1940 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद में कहा था, मेरे पास खून, मेहनत, आंसू और पसीने के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है।
ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट।
हाँ, कोई झूठा वादा नहीं, सीधी बात। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में लीडर को ईमानदार होना चाहिए।
बिल्कुल। या फिर बैटल ऑफ ब्रिटेन के दौरान रॉयल एयरफोर्स के पायलटों के लिए उनकी वो मशहूर लाइन, इतिहास में कभी भी इतने सारे लोगों पर इतने कम लोगों का इतना बड़ा एहसान नहीं रहा।
Never was so much owed by so many to so few।
हाँ, उन गिनती के पायलटों की बहादुरी को उन्होंने अमर कर दिया। ये बताता है कि कैसे कुछ लोगों का साहस भी इतिहास का रुख बदल सकता है।
और वो बात जो पूरी किताब का सार है, जो उन्होंने युद्ध शुरू होने पर रूजवेल्ट से कही थी, इसे अनावश्यक युद्ध कहिए।
The unnecessary war। हाँ, एक वाक्य में पूरी कहानी का निचोड़।
और तुष्टीकरण पर उनकी वो तीखी टिप्पणी तो कमाल की है।
हाँ, वो मगरमच्छ वाली।
हाँ, तुष्टीकरण करने वाला वो होता है जो मगरमच्छ को इसलिए खिलाता रहता है कि शायद मगरमच्छ उसे सबसे आखिरी में खाएगा।
कितना सटीक उदाहरण है ये समझाने के लिए कि खतरों को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है।
एक और बात जो थोड़ी मजाकिया लगती है पर गहरी है, इतिहास मेरे साथ नरमी बरतेगा क्योंकि मैं उसे खुद लिखने का इरादा रखता हूँ।
हाँ, ये दिखाता है कि वो जानते थे कि कहानी कौन कह रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, और वो अपनी कहानी खुद कहना चाहते थे अपने तरीके से।
इतिहास की किताबों या बड़े नेताओं के लिए हैं, या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इनसे कुछ सीख सकते हैं?
अरे बिल्कुल सीख सकते हैं। पहली बात तो भाई, मुश्किलों से भागना नहीं, उनका सामना करना।
अपीजमेंट वाली बात।
हाँ, चाहे ऑफिस में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, या घर में कोई अनबन, या सेहत की कोई चिंता, उसे टालने से वो बढ़ेगी ही। चर्चिल का अनुभव बताता है कि जल्दी सामना करना बेहतर है।
दूसरा, ईमानदारी और साफ बात करना, खासकर मुश्किल वक्त में।
बिल्कुल, जैसे चर्चिल ने देश को सच बताया, ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट। अगर हम अपने रिश्तों में, अपने काम में, मुश्किल हालात में साफ और ईमानदारी से बात करें तो भरोसा बनता है। झूठी तसल्ली से ज्यादा असरदार होता है सच बोलना।
तीसरा, मिलकर काम करने की ताकत, टीम वर्क।
हाँ, चाहे ऑफिस की टीम हो या सोसाइटी की कोई समस्या या दोस्तों का कोई ग्रुप, बड़ी चीजें अकेले नहीं होती। दूसरों के साथ मिलकर भले ही मतभेद हों, काम करने का हुनर सीखना बहुत जरूरी है। चर्चिल का ग्रैंड अलायंस यही सिखाता है।
चौथा, हार न मानने का जज्बा, रेजिलियंस।
हाँ, 1940s में ब्रिटेन की कहानी यही दिखाती है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, असफलताएं मिलती हैं, पर हार न मानना, डटे रहना, ये जज्बा बहुत जरूरी है।
और पांचवा, सिर्फ आज के बारे में नहीं, कल के बारे में भी सोचना, दूर की सोच।
बिल्कुल, कोई भी फैसला लेते वक्त ये सोचना कि इसका आगे क्या असर होगा, चाहे वो पैसे बचाने का फैसला हो या करियर बदलने का, दूर की सोच रखना हमेशा फायदेमंद होता है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद विंस्टन चर्चिल की द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है, एक चीज जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए?
मेरे लिए शायद ये है कि इतिहास तयशुदा नहीं होता, उसे इंसान के फैसले बनाते हैं। युद्ध होना तय नहीं था, वो गलत फैसलों और हिम्मत की कमी का नतीजा था। उसी तरह जीत भी पक्की नहीं थी, वो लीडरशिप, हिम्मत और बलिदान से हासिल हुई। ये हमें हमारी अपनी ताकत और जिम्मेदारी का एहसास कराता है।
सही कहा। और ये भी कि शांति और आज़ादी कितनी नाजुक होती हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, सतर्क रहना पड़ता है।
हाँ।
ये किताब सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बे, गलतियों और सीख की कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम आज उन सबकों को याद रखे हुए हैं।
हाँ, ये सच है कि ये चर्चिल का अपना नजरिया है, उन्होंने अपनी कहानी अपने अंदाज में कही है, थोड़ी सब्जेक्टिव है।
हाँ,
लेकिन इसकी गहराई, इसका स्केल और वो अंदरूनी जानकारी जो इसमें है,
वो
इसे आज भी पढ़ने लायक बनाती है।
एक मास्टरपीस तो है ही।
बिल्कुल।
ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये लीडरशिप पर, मुश्किल वक्त से निकलने पर और भविष्य के लिए सबक लेने पर एक जरूरी किताब है।
हाँ।
और एक चेतावनी भी कि आजादी की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।